ओके तो कल सूरतुल फलक के जो मार्क मसाइल चल रहे थे वो हमने पढ़ना तो मुकम्मल कर लिए थे, ठीक है। सूरतुल फलक के मार्क मसाइल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। सूरतुल नास को सूरतुल नास को हम शुरू करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह मेरे ख्याल में सारे आंसर नहीं हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह वो हम साथ साथ करते रहेंगे। जी मुदस्सर साहब ने आपने जो सवाल पूछा था तो मैंने आपसे कहा था आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं आया तो मैं भी मसरूफ हो गया, इसलिए कि आपकी क्लास के बाद कुछ और मसरूफियत होती है, दूसरों लोगों को पढ़ाना होता है। तो रिकमेंड सम आमिल का जो आपने सवाल किया था, तो ज़ाती तौर पर मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता हूँ जो कि ये अमलियात का काम करते हैं, और लेकिन ये आपको मैं जनरल बता चुका हूँ क्लास के अंदर कल के, ये ऐसी एक फील्ड है, ये एक शोबा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज पाया जाता है। लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लॉयट करते हैं। कुछ लोग जो है वो पैसे लेकर के एक्सप्लॉयट करते हैं कि भैया आपसे खूब ज्यादा पैसे बटोरते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो बगैर पैसे लेकर के भी, यानी बगैर पैसे लिए भी जो है ना उस शक्ल में भी एक्सप्लॉयटेशन मुमकिन है, ठीक है। तो लोग हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स पैसे नहीं ले रहा है इस काम के तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, ठीक है। तो ये कोई वाहिद इंडिकेशन नहीं है कि चूंकि ये साहब पैसे नहीं ले रहे हैं इस वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी और भी दूसरी सूरतें हो सकती हैं, तो इस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। तो पैसे लेने वाला भी एक्सप्लॉयट कर सकता है और पैसे नहीं लेने वाला भी एक्सप्लॉयट कर सकता है। उसी तरीके से पैसे लेने वाला भी आपका सही इलाज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो पैसे ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी कुछ और भी जो यानी नसीहतें समझ लें, तफसीलात तो मजीद और नहीं है लेकिन नसीहतें समझ लें, वो इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस करेंगे सूरतुल नास के तहत भी, ठीक है। तो सूरतुल नास हम शुरू करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما نبي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لفظی ترجمہ اور لفظی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں، خلاصہ تفسیر جو پیج نمبر 850 کے اوپر ہے، پہلے وہ ذرا کوئی پڑھ لیتے ہیں پھر معرفہ مسائل سی کے اندر سے شروع کریں گے. فرمایا کہ آپ کہیے یعنی حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا، تو آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. یہاں پر الناس کا ترجمہ انہوں نے آدمی سے کیا، ٹھیک ہے. تو اس سے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی عورت کیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، انسان کہہ دیتے ہیں یہاں پر انسانوں کے مالک، ٹھیک ہے. تو انسان کہنا بھی ظاہر صحیح ہے کیونکہ اردو زبان کے اندر ہم لفظ انسان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آدمی کہنا بھی کوئی اتنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اردو زبان میں اگرچہ کہ ہم لفظ آدمی جو ہے وہ مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس لفظ کی معنی پہ، مطلب پہ غور کریں تو دراصل اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ آدمی ہر اس کو کہتے ہیں یا ہر اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے. تو آدمی ہمیں اس نسبت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم آدمیم نسبت ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. اب بریکٹس میں اس کی مزید تفسیر کر رہے ہیں خلاصہ تفسیر کے اندر ہی، کہ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह वो वसवसा डालने वाला जिन हो या आदमी। ठीक है, तो यहां तक तो तर्जुमा भी खत्म हो गया। ब्रैकेट्स के अंदर ये छोटी छोटी सी तफसीर भी करते रहता है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। ये तफसीर बयान कुरान से दी गई होती है, कुरान से तफसीर। ठीक है, ये आपको पहले बताया था। ब्रैकेट्स में थोड़ी सी और तशरीह उन्होंने ये करी कि यानी जिस तरह मैं शयातीन उल जिन से पनाह मांगता हूं, इसी तरह शयातीन उल इंस से भी पनाह मांगता हूं। ठीक है, तो ये जो शयातीन होते हैं ये जिन्नों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। ठीक है, इसकी दलील में इन्होंने बाकायदा कुरान की आयात लिखी है, जैसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह जिन्नात और इंसान दोनों में शयातीन होने का जिक्र है। وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ترجمہ اس کا اس طرح بنتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور پھر اس دشمن کی تشریح بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود، شیاطین الانس، انسانوں کے شیاطین اور جن، جنوں کے شیاطین۔ ठीक है, तो ये जो शयातीन होते हैं ये हर नबी के दुश्मन होते हैं, और जाहिर है जब नबी के साथ इनकी दुश्मनी होती है तो फिर नबी के जो मानने वाले उम्मती होते हैं उनके भी ये दुश्मन होते हैं, और ये इंसानों और जिन्नों दोनों में से होते हैं। ठीक है, अब ये आपको गालिबन मैंने तर्जुमे में बताया था कि लफ्ज शैतान जो है वो अरबी जुबान में हर सरकश मखलूक के लिए बोला जाता है। हर मखलूक जो कि हदूद से तजावज कर चुकी हो अपनी सरकशी के अंदर, रिबेलियसनेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर फिर जो जिन होते हैं जो बुराई में हदूद से तजावज कर चुके हो वो भी शामिल हो जाते हैं, इंसान भी शामिल हो जाते हैं, हत्ता कि अगर कोई जानवर भी बहुत ज्यादा सरकश हो तो उसके लिए भी अरब शैतान के लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर है, असर से मुराद ये कि जो जिस हदीस में किसी सहाबी का जिक्र हुआ तो उसको असर कहते हैं। ठीक है, और जमा उसकी आसार बनती है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने एक दफा एक घोड़ा पेश किया, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस घोड़े पर सवार हुए और थोड़ी देर उसकी सवारी करी, लेकिन वो घोड़ा जो है ना बहुत ही सरकश घोड़ा था, तो वो उनसे काबू में बिल्कुल भी नहीं आया। हत्ता कि जब वो उतरे उस घोड़े पर से तो उन्होंने फरमाया कि ये कैसा शैतान है, इस घोड़े के बारे में फरमाया। ठीक है, तो ये शैतान के लफ्ज फिर इवन जानवरों पे भी अरब बोला करते थे। ज़ाहिर उमर तमाम जो है वो अफसहल अरबों में से थे, यानी फसी उनकी अरबी जुबान थी, कुरैश में से थे, कुरैश की जो है वो अरबी सबसे ज्यादा फसी होती है। 9:30 मारूफ मसाइल हम शुरू करते हैं के एक मिनट उठिएगा जी। अच्छा, मारूफ मसाइल फरमाते हैं सूरह फलक में दुनियावी आफात और मसाइब से पनाह मांगने की तालीम है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, पहले हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं कि सूरह फलक के अंदर काफी सारी चीजों से पनाह मांगने के बारे में तस्करा है। यानी अंधेरी रात जबकि वो छा जाए, और गिरों पर फूकने वालियां, ठीक है, और हसद करने वाला जबकि वो हसद करने लगे। लेकिन ये काफी सारी चीजें तो हैं, राइट, लेकिन ये सब की सब जो है वो दुनिया की जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी दुनियावी आफात हैं, दुनियावी मसाइब हैं। और फरमाते हैं यहां पर कि इस सूरत में उखरवी आफात से पनाह मांगने की ताकीद है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जिस चीज से पनाह मांगने की बारे में सिखाया जा रहा है, अगर वो आफत किसी के ऊपर आ जाए तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ये जो शर खन्नास है, वसवसे डालने वाला, ये आखिरत बर्बाद कर देता है, और बाकी जो चीजें थी सूरतुल फलक में वो दुनिया बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तो फरमाया कि जैसा कि लफ्ज शर का मफहूम सूरह फलक में बयान किया गया है कि आलाम और मूजिबात आलाम दोनों को शामिल है, तो शर का लफ्ज जो है वो वहां भी इस्तेमाल किया गया और यहां पर भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो वहां पर जो था ना, वहां पर आलाम और आफात उनका तस्किरा था। ठीक है, और यहां पर जो है वो मूजबात आलाम का तस्करा है सूरत अन्नास के अंदर, यानी वो चीजें जो कि आलाम व आफात का सबब और वजह बनती हैं। इस सूरत में उस शर से पनाह मांगी गई है जो तमाम गुनाहों का सबब है, ठीक है, तमाम गुनाहों का सबब है, यानी शैतानी वसाविस और असरात। और चूंकि आखिरत की मुजर्रत अशद है इसलिए इसकी ताकीद पर कुरान खत्म किया गया है। आखिरत की मुजर्रत यानी आखिरत का जो नुकसान है वो ज्यादा शदीद है, दूसरे तमाम नुकसानों से ज्यादा शदीद है। ये जो अशद लफ्ज है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जिस तरह से कहते हैं कि बिग एंड बिगर, तो बिगर जो है ना ये कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े को कहते हैं। तो ये अशद भी जो है वो अरबी जुबान में ऐसे ही सीगा है कि जो कि किसी चीज की ज्यादा बड़ाई को बयान करता है। यहां पर ज्यादा बड़ाई किस चीज में, बुराई के अंदर, नुकसान के अंदर, ज्यादा नुकसान। तो आखिरत का नुकसान ज्यादा शदीद है इसलिए उसकी ताकीद पर पूरा कुरान खत्म किया गया है। आगे फरमाते हैं कि कुल औज़ु बिरब्बिन्नास रब के मानी पालने वाले और हर हाल की इस्लाह करने वाले के हैं। इस जगह रब की इजाफत नास की तरफ की गई और पहली सूरत में फलक की तरफ, वजह यह है कि सूरह फलक में जाहिरी और जिस्मानी आफात से पनाह मांगना मकसूद है और वो इंसान के साथ मखसूस नहीं, ठीक है। यानी अब ये बता रहे हैं कि यहां पर जो औज़ु बिरब्बी आया ना, तो इसके अंदर रब यानी रब की इजाफत, लफ्ज रब की इजाफत यहां पर नास से की गई है और पिछली सूरत में रब की इजाफत की गई थी फलक के साथ, यानी फलक का रब, और यहां पर इंसानों के रब की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले फलक की का तस्किरा क्यों किया गया और यहां पर इंसान का तस्किरा क्यों किया गया, ठीक है, इसकी वजह बयान कर रहे हैं कि जो सूरह फलक में जाहिरी और जिस्मानी आफात से पनाह मांगना मकसूद था वो इंसान के साथ मखसूस नहीं है, जानवरों को भी बदनी आफात और मसाइब पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे रात का जो अंधेरा छा जाता है तो उस अंधेरे के अंदर जो शुरूर और बातें होती हैं तो ये शर वगैरह जो है ये इवन जानवरों की भी तो आ सकता है ना, जैसे कीड़े मकौड़े निकल गए, ठीक है, तो कीड़े मकौड़े जिस तरह से रात को इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसी तरह जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी तरह से चोर जो है वो जिस तरह से इंसान को कत्ल भी कर सकता है उसी तरह किसी जानवर को भी कत्ल कर सकता है, हत्ता के जादू का असर जो है वो इंसान के जानवरों के ऊपर भी किया जा सकता है, ठीक है, जानवर बीमार पड़ जाए उसके, क्योंकि नुकसान पहुंचाना मकसूद होता है ना जादू करने वाले का, वो तो हसद में मुब्तला होता है और हासिद का मकसद होता है नुकसान पहुंचाना महसूद को, ठीक है। तो अगर जानवरों को का नुकसान करवा करके उसको तकलीफ पहुंचा सकता है तो वो जानवर के ऊपर जादू कर सकता है, ठीक है। तो जो सूरह फलक है उसके अंदर ये हर चीज के ऊपर शर आ सकता है, ठीक है, यानी हर वो जो शर है वो हर चीज से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इस वजह से फलक रब्बुल फलक फरमाया गया, क्योंकि फलक जो है सुबह का जो पौ फूटना होता है ये फलक हर एक के ऊपर आती है, ठीक है। जब सुबह नमूदार होती है तो उस सुबह से सिर्फ इंसान तो फायदा नहीं उठाता ना, बल्कि उससे तो हर मखलूक फायदा उठाती है, हर मखलूक को रोशनी सूरज ही मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया, यहां पर खास इंसान का तज़किरा किया, रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, इसलिए कि यहां पर जो शर मजकूर है ये शर इंसानों के साथ मखसूस है, ठीक है। तो यही फरमाया कि बखिलाफ वसवसे शैतानी के कि इसका नुकसान इंसान के साथ मखसूस है और जिन्नात भी इसमें तबअन शामिल हैं, इसलिए यहां रब की इजाफत नास की तरफ की गई, ठीक है। यानी जिन्नात का तज़किरा कुरान के अंदर अलग से नहीं आता है, ठीक है, अक्सर यानी सवाय सूरह जिन के अंदर जिन्नात का कुछ तज़किरा है, ठीक है, उसके अलावा चंद आयात हैं जहां पर जिन्नात का तज़किरा है, लेकिन बाकी जगहों पे सिर्फ इंसान का तज़किरा है, ठीक है। तो जिन्नों का तज़किरा जो है वो दरअसल इंसानों के तहत आ जाता है, इंसानों के यानी के तहत जो है ना वो जिन्नात भी शामिल हो जाते हैं। ये ऐसे ही है جیسے کہ اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پر مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, مردوں کے لیے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مردوں کے تحت عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. الگ سے عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا سوائے چند جگہوں کے, ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین آمنو ہی کہا گیا, حالانکہ آمنو جو ہے وہ مردوں کو کہا جاتا ہے, ایمان لانے والے مرد, ٹھیک ہے, لیکن جہاں بھی آمنو کہا گیا تو وہاں پر جو مومنات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو الگ سے نا جو تابع لوگ ہوتے ہیں ان تابع لوگوں کا تذکرہ الگ سے نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جنات بھی جو ہیں وہ انسانوں کے تابع اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اگرچہ کہ ان کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا جاتا. یعنی جو خناس کا شر ہے یہ شر جنات کو بھی پہنچتا ہے جیسے یہ انسانوں کو پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیک جنات بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان نیک جنات کو بھی برے جنات جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں, ان کو برائی کی طرف ابھارتے رہتے ہیں. تو یہ انہوں نے تفسیر مظہری کے اندر ذکر کیا ہے, اور تفسیر مظہری نے بھی جو یہ بات لکھی ہے نا یہ تفسیر بیضاوی سے نقل کر کے لکھی ہے. تفسیر بیضاوی تو اور بھی زیادہ پرانی تفسیر ہے, جو کہ ایک بہت بڑے قاضی بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ تھے, انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی, اور یہ غالباً عراق میں یا شام میں کہیں انہوں نے لکھی تھی, ٹھیک ہے. تو تفسیر مظہری میں بھی یہ تفسیر بیضاوی سے نقل کی گئی ہے یہ والی بات, اس وجہ سے انہوں نے مظہری انل بیضاوی لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مشہور تفاسیر ہیں قرآن کی. اچھا آگے فرماتے ہیں ملک الناس, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, یعنی لوگوں کا بادشاہ. پھر الہ الناس, الہ معبود کو کہتے ہیں, تو لوگوں کا معبود جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں صفتوں کا اضافہ کیوں کیا گیا, ٹھیک ہے. رب الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ملک اور الہ کے الفاظ کی ایڈیشن کیوں کی گئی یہاں پر, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس لیے کیا گیا ہے یہ اضافہ کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے, جیسے رب الدار گھر کے مالک کو کہتے ہیں, دار گھر کو کہتے ہیں, تو رب الدار گھر کا مالک, ٹھیک ہے, جو گھر والوں کی پرورش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور رب المال وہ مال کے مالک کو کہا جاتا ہے, جیسے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا کہ جو مال کی پرورش کرے, یعنی مال کو کہیں پہ انویسٹ کر کے اس کو بڑھائے, ٹھیک ہے. تو اس یہ ایسے ہی ہے جیسے مال کی پرورش کرتا ہے, وہ بڑھاتا ہے اس کو, تو اس کو رب المال کہتے ہیں, مال کا رب, رائٹ. تو لفظ رب جو ہے نا یہ تو دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر گویا کہ مزید بات کنفرم کرنے کے لیے کہ یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر ملک الناس کا بھی اضافہ کیا گیا کہ انسانوں کا بادشاہ, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا, کیونکہ گھر کا مالک جو ہے وہ رب الدار تو کہلا سکتا ہے, اور مال کا مالک وہ رب المال تو کہلا سکتا ہے, لیکن وہ مال کا بادشاہ تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. صرف مالک ہو جانے سے آپ بادشاہ نہیں بن جاتے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں, گویا کہ رب کا ترجمہ یہاں پر مالک سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مالک, ملک نہیں, مالک. مالک کہتے ہیں اونر کو, ٹھیک ہے. تو رب کا ترجمہ یہاں پر مالک سے کر رہے ہیں. تو ہر مالک جو ہے نا وہ بادشاہ تو نہیں ہوتا نا, لیکن اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں جو کہ ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. بادشاہ کا مطلب ملک ہیں, کنگ ہیں, یعنی ان کی اتھارٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جن چیزوں کے مالک ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کا حکم ماننا بھی, کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم مانا جائے, جس کا سکہ چلتا ہو, جس کی بات چلتی ہو, اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں, اس لیے ملک کا اضافہ کیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی ہے, ٹھیک ہے. यानी मालिक भी है और मलिक भी है। फिर हर बादशाह माबूद नहीं होता, ठीक है, मुल्कों के अंदर बादशाह तो होते हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनका ऑर्डर चलता है, उनकी अथॉरिटी होती है, लेकिन उनकी लोग परस्तिश तो नहीं करते ना, ठीक है। तो हर बादशाह यानी माबूद नहीं होता, बहुत कम बादशाह दुनिया में गुजरे हैं कि जिनकी के उनके रियाया परस्तिश भी करती थी, जैसे फिरौन, ठीक है, उसकी रियाया परस्तिश भी करती थी, लेकिन हर बादशाह जो है वो तो माबूद नहीं होता। इसलिए तीसरी सिफत जिक्र फरमाई, ठीक है, इलाहिन नास वाली सिफत, यानी इंसानों का माबूद। अब इन तीन सिफतों को जमा करने में हिकमत यह है कि इनमें से हर सिफत हिफाजत की दाई है, यानी हर सिफत जो है वो पॉइंट करती है हिफाजत वाली बात के ऊपर, हिफाजत वाली सिफत के ऊपर, क्योंकि हर मालिक अपने ममलूक की हिफाजत करता है, घर का जो बड़ा होता है वो अपने घर वालों की हिफाजत भी करता है, ठीक है। उसी तरह से बादशाह अपनी रियाया की हिफाजत का अपने आप को जिम्मेदार समझता है। इसी तरीके से जो माबूद होता है ना, वो तो और भी ज्यादा अपने यानी आबिदों की हिफाजत का ख्याल करता है। तो अल्लाह ताला चूंकि माबूद है, तो माबूद जो है वो अपने जितने भी इबादत करने वाले हैं उनकी हिफाजत का ख्याल करता है, ठीक है। तो ये तीनों सिफात जो है ना अल्लाह ताला की, ये तीनों हिफाजत की तरफ दलील, हिफाजत की तरफ दाई हैं, ठीक है। ये तीनों सिफतें सिर्फ हक ताला में जमा हैं, उसके सिवा कोई इन सिफतों का जामे नहीं है, यानी कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके अंदर ये तीनों सिफात जमा होती हों, मालिक होने की भी, मलिक होने की भी, और माबूद होने की भी। इसलिए उसकी पनाह हासिल करना सबसे बड़ी पनाह है, ठीक है, अल्लाह ताला की पनाह हासिल करना ही सबसे बड़ी पनाह है, और अल्लाह ताला से इन तीन सिफतों के साथ पनाह मांगना दुआ की कबूलियत के लिए अकरब है, यानी ज्यादा करीब है। अकरब ये भी यानी इसम तफजील कहते हैं इसको अरबी में, जिस तरह अशद था ना वो भी इसम तफदील का सीगा था, उसी तरह अकरब ये भी इसम तफदील का सीगा है, ताफा वौद या नाम तफदील, ठीक है। तो अकरब का मतलब होता है ज्यादा करीब, तो अल्लाह ताला से इन तीन सिफतों के साथ पनाह मांगना दुआ की कबूलियत के लिए ज्यादा करीब है कि या अल्लाह आप ही इन सिफात के जामे हैं, हम सिर्फ आप ही से पनाह मांगते हैं। यहां जबकि पहले जुमले में रब्बिन्नास आ चुका तो बज़ाहिर तकाजा मुकाम का यह था कि आगे इसकी जमीरें राजे करने से काम लिया जाता, मलिकिहिम व इलाहिम फरमाया जाता, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आगे जमीरें इस्तेमाल करते, जमीर कहते हैं प्रोनाउन को, ठीक है, ये आपको तर्जुमे के दौरान बताया था। तो हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हम किस तरह बात करते हैं, हम नाउन सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर उसी बंदे का दोबारा तस्करा आ जाए ना पैराग्राफ के अंदर तो हम उसका नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश से समझाना जरा ज्यादा आसान है इस कॉन्सेप्ट को, उसकी वजह है कि उर्दू के अंदर थोड़ा सा यानी उर्दू चूंकि एक अरबी से ही ड्राइव की हुई जुबान है ना, तो एक अंदाज में हमें उससे फायदा होता है और एक अंदाज में हमें उससे नुकसान होता है, ठीक है। तो आप अरबी को समझाने के लिए उर्दू का सहारा लेना जरा कभी मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी एक बिल्कुल मुख्तलिफ जुबान है, एक बिल्कुल डिफरेंट जुबान है, उसका अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी से कभी एग्जाम्पल लेकर के ना अरबी की चीजों को समझाना एक्चुअली ज्यादा आसान ही लगता है। तो ये ऐसे है जैसे कहें कि अहमद इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब दोबारा अगर हम अहमद का जिक्र करना चाहते हैं ना तो हम दोबारा रिपीट नहीं करते कि अहमद गोज टू स्कूल एवरी डे एंड अहमद डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, ये नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं, अहमद इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, तो ही हम कहते हैं यानी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही यहां पर कह रहे हैं कि भाई जब नास का लफ्ज एक दफा पहली आयत में ले आए, ठीक है, तो अब दूसरी आयत और तीसरी आयत के अंदर लफ्ज नास को रिपीट क्यों कर रहे हैं, इसकी जगह इन्होंने उसकी जमीर क्यों नहीं इस्तेमाल करी, अल्लाह ताला ने जमीर क्यों नहीं इस्तेमाल करी, प्रोनाउन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता, होम वाला प्रोनाउन होता नास के लिए, ठीक है। अरबी में क्या प्रोनाउन होता है? हुम। हुम एक प्रोनाउन होता है जो कि प्लूरल के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो मलिकी हिम बोलते, अच्छा हुम जो है ना वो अगर मलिक के साथ जोड़ के पढ़ेंगे ना तो वो मलिकी हुम नहीं पढ़ेंगे बल्कि मलिकी हिम पढ़ेंगे उसको। उसी तरीके से इलाही हिम पढ़ेंगे, अगर प्रोनाउन लेकर आए ना नास की बजाय, तो इलाही नास की बजाय हम पढ़ेंगे इलाही हिम, यानी उनका इलाह। तो ऐसे क्यों अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया बल्कि नास को रिपीट किया, लफ्ज नास को रिपीट किया, हालांकि ऐसे किया तो नहीं जाता। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि इस लफ्ज का बार बार तकरार, तकरार कहते हैं रिपीटिशन को, तो इस लफ्ज का बार बार तकरार इसलिए है कि मुकाम दुआ और मदाह व सना का है, यानी ये जो मुकाम है ना, ये जो जगह है, ये जगह जो है ना ये दुआ वाली जगह है और मदाह और सना की जगह है। मदाह कहते हैं किसी की तारीफ करना और सना कहते हैं किसी की पाकीजगी बयान करना, ठीक है। मदाहो सना, मदहो सना उर्दू के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो जब आप दुआ करते हैं ना या किसी की तारीफ करते हैं तो उसमें तकरार ही बेहतर होती है, यानी बार बार रिपीटेशन, ठीक है, ये अच्छी लगती है दुआ के अंदर, बार बार रिपीटेशन अच्छी लगती है, ठीक है। उसी तरह किसी की तारीफ को भी बार बार रिपीट करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर भी आउजू का कॉन्सेप्ट है और आउजू एक दुआ है, मैं पनाह मांगता हूं, ठीक है, अल्लाह ताला से जब भी हम कोई चीज मांगते हैं ना तो उसी को दुआ कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को हम अपने से बड़ा समझ करके उससे चीज मांग रहे होते हैं, ठीक है। मांगने का काम तो हम अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, बच्चे से भी कहते हैं ना हमें मुझे पानी का ग्लास ला के दो, तो क्या मतलब हम उससे दुआ कर रहे होते हैं? हम उससे दुआ नहीं कर रहे होते, इसलिए कि हम उसको छोटा समझ के मांग रहे होते हैं चीज, हम उसको अपने से बड़ा समझ के चीज नहीं मांग रहे होते, ठीक है। तो दुआ उसको कहते हैं जब आप किसी को अपने से बड़ा समझ करके और उसको बहुत यानी अजमत दे करके आप उससे कोई चीज यानी बड़ी नजाजत के साथ और बड़ी हम्बलनेस के साथ मांगे, इसको दुआ कहते हैं, ठीक है। तो आउजू जो है ना ये दुआ है और दुआ के अंदर रिपीटेशन अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस वजह से ना लफ्ज नास को यहां पर रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये एक तशरीह है इसकी कि भाई ये नाउन रिपीट क्यों किया गया, प्रोनाउन क्यों नहीं लेकर किया है। दूसरा फरमाते हैं कि बाज़ हज़रात ने लफ्ज नास के बार बार तकरार में ये लतीफा बयान किया है, ठीक है, लतीफा बयान किया है। क्या मतलब? लतीफा से मुराद जोक नहीं है, ठीक है, यानी हंसाने के लिए जो बात हम लोग उर्दू जुबान में कहते हैं ना उसको कहते हैं लतीफा, लेकिन ये उर्दू जुबान में हम कहते हैं, ठीक है। असल हकीकत क्या है लफ्ज लतीफे की? असल हकीकत है कि हर लतीफ बात को लतीफा कहते हैं। लतीफ, लतीफ मीन्स हल्की फुल्की बारीक, ठीक है, उसको लतीफ कहा जाता है, राइट। यह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज लतीफ, ठीक है। तो हल्की फुल्की और बारीक बात को लतीफा कहा जाता है, ठीक है। ये अरबी जुबान के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं, उर्दू जुबान के जोक वाले मतलब में ये बात नहीं कर रहे। तो एक हल्की फुल्की सी बात लोगों ने कुछ लोगों ने नास के तकरार के बारे में करी है कि इस सूरत में ये जो लफ्ज नास है ना ये 5 मरतबा आया है, ठीक है। आप देख लें बराबर में काउंट कर लें तो नास का जो लफ्ज है ना ये 5 मरतबा आ रहा है। तो इसकी क्या लॉजिक बयान करी, ठीक है, वो लॉजिक है कि जो पहला लफ्ज नास आया ना इससे मुराद इंसानों में से बच्चे हैं, ठीक है, और लफ्ज रब और रुबूबियत इसका करीना है, ठीक है। देखें सबसे पहले जो लफ्ज नास आया सूरत के अंदर वो लफ्ज रब के साथ आया, रब्बिन नास। दूसरी दफा जो नास आया वो लफ्ज रब के साथ नहीं आया, वो मलिक के साथ आया, ठीक है। तो इस तरह से ना ये वजह बयान कर रहे हैं कि जो पहली दफा नास आया उसका उसके साथ रब का तज़किरा किया, क्योंकि रब जो लफ्ज है ना इसके अंदर एक परवरिश वाला कॉन्सेप्ट आता है, और परवरिश किसकी की जाती है? परवरिश बच्चों की जाती है। बच्चों को जो है ना वो परवरिश की जरूरत होती है, वो अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो परवरिश करने वाले उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं, تو لفظ رب کا تعلق جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے تو انسانوں میں سے بچوں کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ بچوں میں پرورش والا کانسیپٹ زیادہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد دوبارہ جب لفظ ناس لے کر کے آئے تو دوسرے لفظ ناس سے جوان مراد ہے, انسانوں میں سے جوان, اور لفظ ملک اس کا قرینہ ہے. قرینہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو کہ قریب کی بات ہو, ٹھیک ہے, جو کہ کلوز پروگزیمیٹی میں ہو کسی کے, اس کو قرینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلوز پروگزیمیٹی میں یعنی زیادہ قریب کی بات ہو نا, اس کے لیے لفظ ٹیکنیکل لفظ ہے قرینہ. تو لفظ ملک جو ہے نا یہ جوانوں سے زیادہ کلوزنس رکھتا ہے جوانوں سے. ٹھیک ہے, کیوں؟ تو فرمایا کہ لفظ ملک اس کا قرینہ ہے جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے وہ جوانوں کے مناسب ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں نا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے یعنی ملک کے احوال کا خیال کرنا. ٹھیک ہے, ملک کے تمام ضروریات اور تمام احوال, تمام میٹرز, ان کا خیال کرنا, اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیاست ہم جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں نا لفظ کو کہ یہ بندہ تو سیاست کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بہت نیگیٹولی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, یہ اصل میں یہ ایک بہت پازیٹو ورڈ ہے سیاست. ٹھیک ہے, اب وہ سیاست کے اندر چونکہ آج کل کے سیاستدان جو ہیں وہ چونکہ کرپشن زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے سیاست کا مفہوم ہم نے نیگیٹو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل مفہوم سیاست کا نا وہ نیگیٹو نہیں ہے. سیاست کا مطلب ہوتا ہے امور سلطنت کا خیال کرنا, سب کچھ اس سیاست کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں کیونکہ وہ امور سلطنت کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ جو کام ہے امور سلطنت کا خیال کرنا اور اس یہ جو ہے نا وہ جوانوں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے, اس لیے کہ یہ جو ملک کے جو کام کاج سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں یا جوان لوگ ہوتے ہیں. یہ بچے یہ کام نہیں کرتے اور بوڑھے یہ کام نہیں کرتے, رائٹ, جوان یہ کام کرتے ہیں. تو لفظ ملک جو ہے اس کی کلوزنس جو ہے وہ جوانوں کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تیسرا جو لفظ ناس آیا اس سے بوڑھے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے نا الہ کا لفظ استعمال ہوا تیسری دفعہ والے ناس کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر عبادت کا کانسیپٹ ہے اور عبادت جو ہے وہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے بوڑھے زیادہ کرتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے. آج کل تو انفارچونیٹلی بوڑھے عبادت کے علاوہ ہی کچھ دوسرے کام زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آئیڈیلی سپیکنگ بوڑھے جو ہے نا ان کو عبادت سے زیادہ شغف ہوتا ہے. جوان بھی عبادت کرتے ہیں, حتیٰ کہ بچے بھی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جوان کو اور بہت سارے ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں, لیکن بوڑھے جو ہے وہ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہوتے ہیں, اب ان کا زیادہ وقت عبادت میں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو الہ کے لفظ کا زیادہ تعلق جو ہے نا وہ بوڑھوں سے ہے جو دنیا سے منقطع ہو کر عبادت میں مشغول ہوں, اور لفظ الہ اس کا قرینہ ہے جو عبادت کی طرف مشیر ہے یعنی اشارہ کرنے والا ہے. مشیر کہتے ہیں اشارہ کرنے والے کو. ٹھیک ہے, تو یہ تین ہو گئے. پھر چوتھا لفظ جو ناس آیا ہے اس کے اندر, چوتھا لفظ ناس کدھر آیا ہے؟ صدور ناس. ٹھیک ہے, تو چوتھے لفظ ناس سے مراد اللہ کے صالح بندے ہیں, اور لفظ وسوسہ اس کا قرینہ ہے کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے, ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اس کا مشغلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں بھی وسوسے آتے ہیں, اور شیطان جو ہے نا وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے کہ اب تو یہ نیک بن چکے ہیں اب میں ان کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چوتھا لفظ ناس آیا اس کا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے, نیک بندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا, برے لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالتا کیا شیطان؟ اس کا کیا جواب ہے اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہاں پہ نیک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو برے لوگوں کے دلوں میں کیا شیطان وسوسے نہیں ڈالتا؟ تو پھر ان کو یہ بات کیا نہیں پتا کہ شیطان تو برے لوگوں کے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے؟ تو اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ जी चले खैर, इसका जवाब यह है कि बुरे लोगों की खाली दिलों में वो वसवसे नहीं डालता, बुरे लोग तो उस वसवसे के ऊपर अमल करते हैं और वो शैतान के कब्जे में आ जाते हैं अमल करके। ठीक है, उनका मामला वसवसों से आगे बढ़ा हुआ होता है, शैतान उनके ऊपर गालिब आकर के उनसे बुरे काम भी करवाना शुरू हो जाता है। सिर्फ वसवसों तक बात नहीं होती, वसवसों का ज्यादा मसला तो नेक लोगों के साथ होता है। ठीक है, यानी जो आम नेक लोग होते हैं उनको शैतान वसवसों के जरिए से हर वक्त तंग करके रखता है। ठीक है, बुरों को तो गोया कि उसने काबू कर लिया होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये जो चौथा लफ्ज नास आया इसका ताल्लुक नेक सालेह बंदों से फरमाया। ठीक है, और फिर पांचवा जो नास का लफ्ज आया तो फरमाते हैं पांचवें लफ्ज नास से मुराद मुफसिद लोग हैं, मुफसिद जो कि फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनके शर से पनाह मांगी गई है, उनके शर से पनाह मांगी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पांच दफा लफ्ज नास यहां पर रिपीट हुआ और हर दफा जो लफ्ज नास आया उसका इंसानों की एक डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक बयान किया। ठीक है, तो ये एक लतीफा है, एक लतीफ बात है जो कि किसी आलम ने अपनी किताब के अंदर लिखी होगी, लेकिन ये सारी जो बातें करते हैं ना मुफस्सिरीन अनलेस के हदीस से इसका इसका रेफरेंस देते हो या किसी आलम सहाबी से इसका रेफरेंस देते हो तो फिर तो ये बात एक क्लियर तफसीर हो जाती है, यानी एक पक्की तफसीर हो जाती है उस आयत की। लेकिन अगर ये इस किस्म का रेफरेंस ना होना तो ये जो एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं ये एहतमाल के दर्जे में एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं, एहतमाली एक्सप्लेनेशन, यानी गोया के अपने तौर पर ना एक बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कह रहे होते कि नहीं अल्लाह का सिर्फ यही मतलब है ये बात करने से। ठीक है, यानी कतई तौर पर बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से एक्सप्लेनेशन बयान करना जायज हो जाता है। ठीक है, वरना अगर वो ये कहे ना कि नहीं नहीं अल्लाह का तो यही मतलब है, पहले नास का मतलब है बच्चे, दूसरे नास का मतलब है नौजवान, तीसरे नास का मतलब है बूढ़े, चौथे नास का मतलब है नेक साले मर्द और पांचवें नास का मतलब है बुरे लोग। ठीक है, अगर इस तरीके से बात करें तो फिर यह नाजायज हो जाएगा क्योंकि कोई कतई दलील इसके ऊपर नहीं है, कंफर्म दलील कोई नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो एहतमाल के दर्जे के अंदर बात करते हैं और अगर अकल को बात लगती है और खिलाफ शरीयत उसके अंदर कोई बात नहीं होती है तो उस बात को फिर किताबों के अंदर नोट कर लिया जाता है, नकल कर दिया जाता है किताबों में। ठीक है, क्योंकि कोई खिलाफ शरीयत तो बात नहीं बनती ना इसके अंदर, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, कोई शरीयत की तो नुकसान नहीं होता है इसके अंदर का। अगर आप कहेंगे जी पहला नास जो है वो बच्चे से मुराद ले सकते हैं और दूसरे नास से मुराद जो है वो नौजवान ले सकते हैं। ठीक है, तो एहतमाल के दर्जे के अंदर इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं एज लॉन्ग एज कि वो खिलाफ शरीयत कोई बात ना हो उसके अंदर, उसके अंदर और कतईयत के साथ वो बात ना कर रहे हो। ठीक है, आगे फरमाते हैं मिन शर्रुल वसवासिल खन्नास, ये जो आयत है इसकी तफसीर में, अब यहां पर बहुत ज्यादा तफसीलात साथ साथ आती जाएंगी। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तीन सिफात जिक्र करके अब उसका बयान है जिससे पनाह मांगना मकसूद है, वो है वसवास खन्नास। ठीक है, वसवास ये एक मसदर है, वसवास मसदर दरअसल बमाने वसवसा है। ठीक है, यानी यहां शैतान को वसवास मुबालिगतन फरमाया गोया कि वो सरापा वसवसा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी तफसीर में, तो इसको समझ लीजिएगा कि ये जो वसवास फरमाया ना ये एक सिफत के तौर पर फरमाया, नहीं सिफत के तौर पर नहीं फरमाया, यानी इसका जो तर्जुमा असल में इसका तर्जुमा बनता है वसवसा। ठीक है, इसका तर्जुमा बनता है वसवसा। ठीक है, और खन्नास का मतलब होता है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो खन्नास को वसवसा क्यों कहा गया, हालांकि ये ऐसे ही है जैसे कि आप कहें कि किसी शख्स को कहें कि भाई अहमद तो बुराई है, अहमद तो बुराई है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना अहमद तो बुराई है, तो ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि अहमद बुराई तो नहीं है ना, अहमद तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बुरा आदमी है, इसकी सिफत है कि ये बुरा है। ठीक है, लेकिन आप उसको बुराई नहीं कह सकते, बुराई कह देना जो है ये लैंग्वेज के अतबार से सही नहीं लगेगा कि भाई आप अहमद को बुराई क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अहमद को आप ये कह सकते हैं कि ये बुरा आदमी है, या आप अहमद अगर बहुत अच्छा बंदा हो तो आप उसको ये तो नहीं कहते ना कि अहमद तो अच्छा ही है, ये तो नहीं कहते। आप ये कहते हैं कि अहमद अच्छा आदमी है, ठीक है। तो फिर यहां पर खन्नास को वसवास क्यों कहा? क्योंकि वसवास का मतलब तो होता है वसवसा, ठीक है। तो ये जो खन्नास है उसको वसवसा क्यों कहा? ये कहते हैं कि भाई वसवसा डालने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खन्नास को वसवसा क्यों कहा, इसलिए कि खन्नास जो है ना ये सरासर वसवसा है या सरापा वसवसा है। ये ऐसे ही है जैसे अगर अहमद बहुत ज्यादा नेक इंसान हो और वो कभी भी कोई बुरा काम ना करे तो हम उसको उर्दू जुबान में क्या कहते हैं कि भाई अहमद तो सरापा खैर है, यानी गोया कि अहमद पूरा का पूरा खैर ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर अहमद आदमी वो सिर्फ और सिर्फ बुराई का काम करता हो, यानी हर वक्त जो है वो शरारत में लगा रहता हो, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये तो सरापा शर है, ठीक है। उसको फिर कहते हैं कि ये तो सरापा शर है, ठीक है। इसी तरीके से जो खन्नास है ना ये हर वक्त वसवसे डालने के काम में लगा रहता है, इस वजह से उसको सरापा वसवसा कहा, यानी ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये ही एक काम है जो कि वो हर वक्त करता रहता है, ठीक है। इस वजह से उस खन्नास को सरापा वसवसा कहा, ठीक है। वरना लफ्ज वसवास जो है ना वो लैंग्वेज के एतबार से यहां पर मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। तो यही फरमाने के यहां शैतान को वसवास मुबालिगतन, यानी इसका जो ये काम है ना वसवसे डालना, ये इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा करता है गोया कि वो सरापा वसवसा है। और वसवसा के मानी क्या है, अब वसवसे की तारीफ बता रहे हैं। वसवसा के मानी शैतान का अपनी अतात की तरफ एक मख्फी यानी छुपे हुए कलाम के जरिए बुलाना है, जिसका मफहूम इंसान के दिल में आ जाए और कोई आवाज सुनाई ना दे, ठीक है। यानी आपके कान में वसवसे की आवाज नहीं आ रही होती, बस आपके जहन के अंदर एक आइडिया आ रहा होता है, तो ये एक हिडन तरीके से शैतान डाल रहा होता है, आपको आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन आपके जहन के अंदर आइडिया आ जाता है किसी बुरे काम के करने का, इसी को वसवसा कहते हैं। तो ये काम शैतान, ये जो खन्नास है ना, ये काम करता रहता है हर वक्त। अच्छा, खन्नास की लफ्जी तहकीक में बताते हैं कि ये लफ्ज खन्नास ये खुन्नस से मुश्तक है, यानी ये भी एक यानी खुन्नस जो है ना ये इसका रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड से ये डिराइव्ड है खन्नास, ठीक है। तो खन्नास जिसके मानी पीछे लौटने के हैं। शैतान को खन्नास इसलिए कहा गया कि इसकी आदत यह है कि इंसान जब अल्लाह का नाम लेता है तो ये पीछे भागता है, फिर जब जरा गफलत होती है तो ये फिर वापस आ जाता है, फिर वो अल्लाह का नाम लेता है तो ये फिर पीछे लौट जाता है, और यही अमल मुसलसल जारी रखता है। यानी पीछे लौट जाने का मतलब क्या कि वो हमले करता है आपके ऊपर, इंसानों के ऊपर वो अपने वसवसों के साथ हमला आवर होता है, और जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना तो वो फिर अपने आप को रिट्रीट कर लेता है, यानी वो पीछे हट जाता है और फिर वो ताक में लगा रहता है कि ये शख्स जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होगा ना तो फिर मैं दोबारा इसके ऊपर हमला करूंगा। तो चूंकि ये पलट पलट करके हमले करता है, इस वजह से इसको खन्नास कहा गया, क्योंकि खन्नास का मतलब होता है पीछे लौटने वाला। लेकिन दरअसल पीछे लौटने का मतलब ये नहीं है कि ये पीछे की तरफ ही चलता रहता है, बल्कि पीछे लौटता है इस इंतजार में रहता है कि दोबारा हमला कैसे करें, ठीक है। और यही अमल ये मुस्तकिल जारी रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के कल्ब में दो घर हैं, एक में फरिश्ता रहता है, दूसरे में शैतान रहता है, ठीक है। तो ये जो कल्ब है ना, ये कल्ब से मुराद यहां पर रूहानी कल्ब है, फिजिकल हार्ट मुराद नहीं है। तो इसमें गोया के दो ऐसे मकान अल्लाह ताला ने रखे हैं, ये भी जो है ना दरअसल इस कल्ब के अंदर नहीं है। हदीस के अल्फाज से बजाहिर ऐसा लगता है कि कल्ब के अंदर दो घर हैं, लेकिन कल्ब के अंदर दो घर नहीं है, बल्कि दरअसल कल्ब के एडजेसेंट यानी उसकी मुत्तसिल जो है ना वो दो ऐसे मुकाम लताने रखे हैं कि एक मुकाम के ऊपर यानी शैतान मुस्तकिल रहता है और दूसरे मुकाम के ऊपर एक फरिश्ता रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे कंधों के ऊपर दाएं कंधे के ऊपर भी फरिश्ता रहता है, बाएं कंधे के ऊपर भी फरिश्ता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कंधे के अंदर रहता है, ठीक है, अंदर नहीं रहता, यानी वो हमारे कंधे के मसल्स के अंदर नहीं रहता, या हमारे कंधे के जो है वो वेन्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर नहीं रहता, बल्कि वो इस जगह पर गोया के स्टेशन्ड होता है, ये गोया के इसका स्टेशन है। उसी तरीके से कल्ब के अंदर नहीं रहते ये दोनों चीजें, बल्कि ये दोनों जो है ना शैतान और फरिश्ता, ये कल्ब के साथ रहते हैं हर वक्त, ठीक है। तो एक घर में फरिश्ता रहता है, दूसरे घर में शैतान रहता है। फरिश्ता उसको नेक कामों की रगबत दिलाता रहता है और शैतान बुरे कामों की रगबत दिलाता रहता है। ये जो हमारे जहन में आइडियाज आते हैं ना, आइडियाज, ठीक है, तो ये आइडियाज अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो अच्छे आइडियाज कहां से आते हैं? ये अच्छे आइडियाज इस फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला हमारे दिल में डालते हैं, ठीक है, इस फरिश्ते के जरिए से, ठीक है। तो गोया के फरिश्ता जो है ना वो एक मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है अच्छे आइडियाज के लिए, और शैतान बुरे आइडियाज के लिए बतौर मैसेंजर के काम करता है, ठीक है। तो नेकी की जो हमें तौफीक मिलती रहे कि जी हमें जैसे कि ख्याल आए कि जी इस वक्त जो है वो एकदम से हम बैठे हुए हैं और हमें ख्याल आए कि भाई ये तो इशराक का वक्त हो चुका है, और आप खड़े होकर के फिर इशराक पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपको ख्याल आया ना इशराक पढ़ने का, ये कहां से आया, ठीक है, ये ख्याल जो है ये फरिश्ता डाल रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके एकदम से बैठे बैठे ख्याल आया, या गाड़ी चलाते हुए आपको ख्याल आया कि मेरे बैंक में ना आज सैलरी आई है, तो मैं उस सैलरी का इतना परसेंट जो है ना वो गरीबों को सदका कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो ख्याल आपके पास आया नेकी का, जिसको कि नेकी की तौफीक कहते हैं, ये कहां से आया, ये फरिश्ता जो है ना वो आपके दिल के अंदर डाल रहा होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं तौफीक मिलना। ये ख्याल फरिश्ता अपने तौर पर नहीं डाल रहा होता, ये अल्लाह के हुक्म पे आपके दिल में डाल रहा होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अल्लाह की तरफ से किसी को तौफीक मिल जाना, राइट। तो अल्लाह ताला ना इन असबाब को इस्तेमाल फरमाते हैं मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। तो नेकी की तौफीक का जो आइडिया अल्लाह ताला किसी बंदे में डालते हैं वो इस फरिश्ते के जरिए से डालते हैं, जिसका इस हदीस के अंदर तज़किरा है, ठीक है। और बुराई के जो आइडियाज होते हैं ना वो भी इस फरिश्ते, इस शैतान के जरिए से इंसानों के दिलों में डालते हैं, ठीक है। और क्यों डालते हैं ये एक तफसीर है इसके अंदर, इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो होता क्या है कि ये दोनों ही काम करते रहते हैं, फिर जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब तक वो जिक्रुल्लाह में मशगूल नहीं होता तो अपनी चोंच इंसान के दिल पर रख कर उसमें बुराइयों के वसवसे डालता रहता है। रवाहु अबू याला अन अनसिन रज़ियल्लाहु ताला अन मरफुअन, यानी ये एक मरफू हदीस है जो कि यहां पर जिक्र की गई है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से एक प्रोसेस मुस्तकिल इंसान के साथ चलता रहता है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो कुरान की आयतों से भी हमें पता लगता है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतानु, के शैतान जब उनके ऊपर गालिब हो गया ना फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह, तो फिर वो ज़िक्रल्लाह से उनको गाफिल कर देता है। यानी शैतान का गलबा एक ऐसी चीज है कि गलबा हो जाने से ना फिर वो बंदा जिक्र करता ही नहीं है, अल्लाह ताला यानी का जिक्र वो सिरे से भूल ही जाता है। और एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ख़ौफ़ुम मिनश्शैतान, कि ये लोग जो कि मुत्तकी लोग होते हैं ना, जब उनके ऊपर शयातीन का एक ताइफा यानी एक ग्रोह हमला करता है तज़क्करू, तो वो लोग जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं यानी अल्लाह को याद करते हैं। यहां पे तज़क्करू का मतलब है अल्लाह को याद करते हैं। फ़ाइदाहुम मुबसिरून, बस अचानक वो लोग अवेयर हो जाते हैं, यानी वो लोग गोया के चौकन्ने हो जाते हैं, और वो इस शैतान के जो गुरोह का हमला था उससे अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। तो कुरान की भी आयात से हमें ये बात क्लियर होती है और इस हदीस से भी क्लियर होती है कि जिक्र अल्लाह का ये शैतान के खिलाफ हमारी ढाल है, और यही वो चीज है जो कि शयातीन के वसवसों से हमारी हिफाजत कर सकती है, वरना इसके अलावा कोई चीज शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है वो शैतान के वसवसों से महफूज हो जाता है, और जो इंसान का कसरत से जो इंसान अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र नहीं करता वो कभी गाफिल होता है कभी जिक्र करता है, कभी गाफिल होता है कभी जिक्र करता है, ठीक है। तो जिस जिस वक्त में वो गाफिल होता है उस वक्त में शैतान के वसवसे उसके ऊपर आते रहते हैं, और जिस जिस वक्त में वो जिक्र कर रहा होता है उस वक्त शैतान उसके ऊपर वसवसा नहीं डाल सकता है। हमारे आप दायल के जिस हिस्से में फरिश्ते दिल के जिस हिस्से में फरिश्ता रहता है उससे नफ्से लवामा कहते हैं, और जहां शैतान रहता है उससे नफ्से अम्मारा कहते हैं। आई थिंक जी आई थिंक वाला जो बात है ना ये बड़ी मजे की है। ये हम नहीं कर सकते हैं कि मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक अलग ही चीज है, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमैना और नफ्से अम्मारा जो है ये अलग चीजें होती हैं। तो नहीं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं। हाँ अगर आपने ये बात कहीं किसी अल्लाह वाले की किताब में पढ़ी है या किसी बुजुर्ग से ये बात सुनी है तो फिर हम उसको कुछ वेट दे सकते हैं, उसके बारे में गौर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी इसको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। जिक्र मीन्स तस्बीह वगैरह करना। तस्बीह करना से मुराद ये ली जाती है कि आप तस्बीह यानी आप जो है ना वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या इस किस्म की कोई दूसरी चीज जो है वो पढ़ें, ठीक है। तो इसमें बस एक बात हम याद रखें कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो पढ़ना कहाँ पर हो रहा होता है, पढ़ने का अमल कहाँ हो रहा होता है, जुबान से हो रहा होता है, ठीक है। तो आप जब कोई चीज अच्छी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके पढ़ने से आपकी जुबान अच्छे काम के अंदर मशगूल हो जाती है, ठीक है। तो जब जुबान अच्छे काम में मशगूल हो जाएगी तो उससे फायदा क्या होता है कि वो बुरे काम में मशगूल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वो अच्छा काम कर रही है। अब जुबान से आप साथ साथ झूठ नहीं बोल सकते, आप जिक्र भी कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, तो भाई अब आप उस जुबान से झूठ कैसे बोलेंगे, वो जुबान से गीबत कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो जुबान से जिक्र करना बहुत अच्छी बात है। जो जो कलिमात हम जुबान से पढ़ते हैं ना इस तरह के हमारे नाम अमाल के अंदर नेकियां लिखी जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जिस जिक्र की बात हो रही है ये जिक्र है अपने दिल में अल्लाह को याद करना, ठीक है, दिल में अल्लाह को याद करना, क्योंकि वसवसा जो है ना शैतान वो हमारे दिल में डालता है। तो दिल को अल्लाह की याद में जब मसरूफ करेंगे ना तब वो वसवसे से महफूज रहेगा। अदरवाइज अगर हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल है और हम जुबान से तस्बीह कर भी रहे हैं फिर भी हम वसवसों से महफूज नहीं रह सकते, ठीक है। तो जुबान के गुनाह से तो हम महफूज रह लेंगे, रह जाएंगे, क्योंकि जुबान को हम मसरूफ कर रहे हैं अच्छे काम के अंदर, लेकिन अगर हमारा दिल अल्लाह की याद में मशगूल नहीं है ना तो फिर क्या हो रहा होता है कि ये तो हम बचपन से लतीफे एक दूसरे को सुनाते और सुनते आ रहे हैं कि जी मौलवी साहब जो है वो हाथ में तस्बीह लेकर के और क्या कह रहे हैं, क्या दाना है क्या दाना है क्या दाना है, राइट, ये तस्बीह कर रहे हैं सुभान अल्लाह क्या दाना है, और बदनजरी कर रहे हैं औरतों को लड़कियों को देख करके उनके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ सुभान अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक लतीफा है, लेकिन ये एक बात हम करते हैं कि हम जुबान से जो है वो अच्छे यानी जिक्र कर रहे होते हैं लेकिन हम आंखों से बदनजरी भी साथ साथ कर रहे होते हैं, ठीक है, और कानों से जो है वो गीबत भी सुन रहे होते हैं और हमारे जहन के अंदर जो है वो बुरे बुरे ख्यालात भी चल रहे होते हैं और जुबान से तस्बीह भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह यही होती है कि जुबान मशगूल होती है अल्लाह के जिक्र में, हमारा दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल नहीं होता। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना यहां पर दिल से अल्लाह ताला को दिल में अल्लाह ताला को याद करने वाला कॉन्सेप्ट है। वी गेट बिजी विद वर्क देन वी फॉरगेट अल्लाह, इज दिस अ टाइम शैतान कैन अटैक। गेट बिजी विद वर्क का मकसद मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जब आप काम में बिजी होते हैं ना तो आपके हाथ पैर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी आंखें काम कर रही होती हैं, हाथ काम कर रहा होता है और इवन आपका दिमाग काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन दिल एक अलग चीज है, ठीक है। अगर आप अपने दिल को अल्लाह ताला की याद पर ठहराएं ना या ठहराने की मेहनत करें तो ये बात ऐन मुमकिन होती है कि आपके हाथ पैर और आंखें और दिमाग वो किसी काम के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपका दिल फिर भी अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो, ठीक है। तो हमारा दिल जो है ना ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट चीज है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज है, ये कान ये हाथ पैर के ताबे नहीं है, बल्कि एक्चुअली रियलिटी क्या है कि हाथ पैर हमारे दिल के ताबे हैं, दिल हाथ पैर के ताबे नहीं होता। कि अगर हाथ पैर जो है वो कामकाज कर रहे हैं तो दिल भी जो है वो उस कामकाज के अंदर ही लगा रहे, नहीं, ये दिल जो है वो इनके ताबे नहीं है। दिल जो है ना वो बादशाह है, असल में दिल अवाम नहीं है, ठीक है, हाथ पैर अवाम होते हैं। तो इसके लिए जरा मेहनत करनी पड़ती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, और इसके लिए जो इस यानी इस काम के ऊपर मेहनत करता है फिर उसका हाथ पैर कुछ भी करता है उसका दिल अल्लाह ताला की याद के अंदर मसरूफ रहता है, ऐसा शख्स जो है वो शैतान के वसवसों से महफूज हो जाता है, ऐसा शख्स, ठीक है। तो यहां पर कल्बी जिक्र का तस्करा है। यहां पर मरफू हदीस से क्या मुराद है? मरफू हदीस उस हदीस को कहते हैं कि जिसकी जो चेन ऑफ नरेशन है ना, कि वो हदीस किससे सुनी, फिर उसने किससे सुनी, फिर उसने किससे सुनी, ये ऑल द वे नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, इसको मरफू हदीस कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी हदीसें होती हैं जो कि किसी सहाबी में जाके खत्म हो जाती हैं कि ये बात जो है वो सहाबी से सुनी, ठीक है, तो उन हदीसों को मरफू हदीस नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस झूठी होती है या घड़ी हुई हदीस होती है, नहीं, वो हदीस झूठी या घड़ी हुई नहीं होती, ठीक है, वो बस मरफू हदीस नहीं होती है, ठीक है, तो वो मक्तू हदीस कहलाती है, झूठी हदीस नहीं कहलाती, यानी झूठी हदीस एक अलग ही कैटेगरी है। हाँ, बता ये है कि अगर कोई हदीस मरफू हो तो उसकी अहमियत जो है वो गैर मरफू हदीस के मुकाबले में ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली स्पीकिंग, ठीक है। टाइम तो वैसे हो चुका है, बस हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जरा एकदम लेट लेट भी आए थे और उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो मिनल जिन्नति वन्नास, ये बयान है वसवास का, यानी वसवसा डालने वाले जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। तो हासिल इसका यह हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तल्कीन फरमाई कि अल्लाह से पनाह मांगे जिन्नात शयातीन की शर से भी और इंसानी शयातीन की शर से भी। अगर ये शुबा हो कि वसवसा जिन्नाती शयातीन की तरफ से होना, तो जाहिर है कि वो मख्फी तौर पर इंसान के कल्ब में कोई मख्फी कलाम डाल दें, मगर इंसानी शयातीन तो खुल्लम खुल्ला सामने आकर बात करते हैं, उनका वसवसे से क्या ताल्लुक है? तो जवाब उसका यह है कि इंसानी शयातीन भी अक्सर ऐसी बातें किसी के सामने करते हैं जिनसे उसके दिल में किसी मामले के मुतालिक ऐसे शकूक और शुबहात पैदा हो जाते हैं जिनको वो सराहतन नहीं कहते, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहां पर इन्होंने डिस्कस करना शुरू किया है, तो हम इसकी तफसील इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। वो ये है कि जो हमारे जहन में बात आती है ना कि शैतान जो है भाई ये वसवसा हमारे दिलों में डालता है, तो वसवसे की तारीफ तो हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक मख्फी कलाम के जरिए से बुलाना ये वसवसा कहलाता है, ठीक है। तो शैतान तो भाई मख्फी कलाम के जरिए से हमारे जहन में आइडियाज डाल सकता है और बात समझ में भी आती है कि हाँ भाई शैतान ये काम करता है, ठीक है, लेकिन इंसान ये काम कैसे करेगा? क्योंकि इंसान मख्फी कलाम के जरिए से तो हमसे बात नहीं कर सकता ना भाई, वो हिप्नोटिज्म जो होता है वो तो हर बंदा नहीं कर सकता ना कि हिप्नोटिज्म करके हमारे हमें हिप्नोटाइज करके हमारे जहन के अंदर कोई बात डाल दे, ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही यानी कम इस किस्म की चीजें होती हैं। तो यानी इंसान मख्फी कलाम के जरिए से हमारे अंदर कोई आइडिया कैसे डाल सकता है? तो इस बात का ये जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ये कह रहे हैं कि इंसानी शयातीन जो होते हैं ना वो बजाहिर तो खुल्लम खुल्ला के बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो यानी अपनी जुबान से कोई बात कह रहे होते हैं और हमारे कान उसको सुन रहे होते हैं, तो मख्फी तरीके पे बात नहीं कर रहे होते। लेकिन यहां पर इंसानों के लिए वसवसे का जो कॉन्सेप्ट जिक्र किया गया वो इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि बजाहिर वो कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर एक खुफिया मैसेज छुपा हुआ होता है, ठीक है। ये जो इंसानी शयातीन होते हैं ना, ये बजाहिर एक अच्छी बात कह रहे होते हैं लेकिन इसके अंदर एक बुरा वसवसे वाला मैसेज छुपा हुआ होता है जो कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलता, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसके अंदर तो एक बुरा मैसेज मेरे लिए मुझे दिया जा रहा है, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। चूंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इस वजह से इसको भी मख्फी कलाम कहेंगे, ठीक है। अब इसकी तफसीलात जो है इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए, या पीछे का कोई सवाल अगर रह गया हो, अगर आप पूछना चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। जी शाहिद साहब आप कुछ लिख रहे हैं। मैं भी इतना पढ़ लूँ जो कल सवाल किए गए थे, मुझसे अगर मुझसे कुछ रह गया इज इट पॉसिबल दैट मे अफेक्ट द फिजिकल जो अब्दुल मतीन साहब ने ऊपर सवाल किया था ना, इसका भी जवाब हमने पूरा नहीं दिया था, लेकिन इसका जवाब इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर आएगा। क्या तावीज बिदत है? तावीज के बारे में जो सऊद साहब ने एक लिंक भी ऊपर पोस्ट किया था, उस लिंक को भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बहुत बड़े मुफ्ती होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, मुफ्ती इब्राहिम डिसाई साहब, उन्होंने काफी तफसील के साथ दलाइल वगैरह के साथ बात की है। तो तावीज तो यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगने को कहते हैं। तो इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें हैं ना, तो ये यानी बिदत तो नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ये काम अल्लाह ताला से पनाह मांगने वाले तावीज इस्तेमाल किए थे। इन्हीं को दरअसल ना अरबी जुबान के अंदर ना इनको तावीज, इनके लिए तावीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, हालांकि तावीज जो लफ्ज है ना ये है अरबी जुबान का ही, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल जो होता है वो मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज को किया जाता है, किसी काम किसी एक ही काम के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अरब वर्ल्ड के अंदर आप इसके लिए जो वर्ड सुनते हैं ना, वो कहते हैं, वो कहलाती है रुकिया, रुकिया शरईया, जी बिल्कुल रुकिया कहलाती है ये, ठीक है। तो ये रुकिया जो है ना यही तावीज है, और यहां सऊदी अरब के अंदर तो माशाल्लाह बहुत प्रॉपरली, बहुत जो है वो यानी ऑर्गेनाइज तरीके से रुकिया शरिया वाला काम किया जाता है। बाकायदा आप जैसे अगर रियाज में रहते हो तो आप दीरा के मस्जिद में चले जाए, वहां पर उलमा बैठे होते हैं जो कि रुकिया शरिया वाला काम करते हैं, और फूका हुआ पानी भी मिलता है, यानी पड़ा हुआ पानी जिसके ऊपर जो है वो रुकिया पढ़ करके उन्होंने फूका होता है ना, ये दम किया हुआ पानी बाकायदा मिलता है सऊदी अरब के अंदर, और सऊदी अरब के अंदर भी जो ग्रैंड मुफ्ती की जो मुकाम है ना वहां से मिलता है, ठीक है। हम समझते हैं कि जी ये तो इंडिया पाकिस्तान के मौलवियों की बनाई हुई चीजें हैं, नहीं भाई, सऊदी अरब के अंदर भी ये काम होता है, और तमाम अरब उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। उमदत सलूक पर सैयद जवाहर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह हैज अ चैप्टर ऑन तावीज, जी हाँ, तावीज के ऊपर काफी तफसील के साथ उलमा ने लिखी है बातें। किसी इंसान को शैतान कह सकते हैं? इंसान को शैतान कह सकते हैं, यानी ये अरबी जुबान के तौर पर ये बात कही जा सकती है, लेकिन कहनी नहीं चाहिए, इसलिए कि शैतान जो है ना वो एक इंतहाई दर्जे के यानी हदूद से तजावज किए हुए शख्स को कहा जाता है, ठीक है। तो हम किसी शख्स के बारे में इतनी बदगुमानी ना रखें, वो बेशक बुरा होगा वो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ खैर भी होगी, ठीक है। हर इंसान के अंदर ना खैर और शर दोनों होती है, किसी के अंदर खैर ज्यादा होती है तो वो नेक मशहूर हो जाता है, और किसी के अंदर जो है वो शर ज्यादा होता है तो उस वजह से वो बुरा मशहूर हो जाता है। लेकिन शैतान जो है ना वो हमें किसी को कहना नहीं चाहिए, तो क्योंकि हम इंसान की हकीकत से वाकिफ नहीं होते हैं, पीछे कुछ और भी तफसीलात होती हैं जो कि अल्लाह बेहतर जानता है, वो शख्स बेहतर जानता है, तो इस वजह से शैतान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊद साहब प्लीज शेयर द लिंक टू व्हाट्सएप ऑल्सो, ये लिंक यहां पे दिया हुआ है। खैर देखें, ये इंटरनेट से जो है ना हमें बहुत सारी चीजें पता तो लग जाती हैं, लेकिन इनमें इनको समझने की जरूरत भी पड़ती है, समझाने की जरूरत भी पड़ती है। तो हम इसको इंकरेज नहीं करना चाहते कि जी लोग जो है ना वो अपने लिंक्स वगैरह जो है वो ऐसे बगैर गाइडेंस के जो है वो शेयर करते रहें, क्योंकि इसकी वजह से फिर एक चेंज, इट बेसिकली लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर के आप एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ठीक है। तो आप अपने तौर पर ये काम करें, बेशक आप इंडिपेंडेंट हैं, आप मैच्योर हैं, लेकिन हम इसका अपने आप को इसका सबब ही बनाना चाहते हैं, तो जितना महफूज रह सके ना इंटरनेट से उतना महफूज रहना चाहते हैं, और हम आपके लिए भी यही चाहते हैं कि आप भी जितना महफूज रह सकते हैं उतना महफूज रहें, ठीक है। हम यहां पर बेसिकली एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी है कि उलमा से पूछ कर चलना, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट से दीन का इल्म हासिल करने वाली आइडियोलॉजी है ना, ये बिल्कुल उसके यानी इसके 180 डिग्रीज अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस बात को इंकरेज नहीं करूंगा, बाकी ये कि आप बैठें और साथ बैठ करके फिर बात करें, तफसील के साथ हम डिस्कस करें इन चीजों को, वो एक अलग चीज है, वो प्रॉपर तरीका है दीन का इल्म हासिल करने का। तो सऊद साहब से मैंने कल रिक्वेस्ट भी करी थी कि वो फिर ये लिंक शेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि जो मुफ्ती इब्राहिम डिसाई साहब हैं वो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती साहब हैं, और यकीनन वो बहुत ही आला दर्जे के मुफ्ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा अभी? ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल भी हमारी क्लास होगी 8:30 के ऊपर, तो उसमें फिर हम बाकी सूरत नास को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।